अब आगे अल्लाह ताला की कुदरत की कुछ निशानियां थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बाद सूरत अल अराफ का वो हिस्सा शुरू हो रहा है जिसमें अंबिया कराम और उनकी कौमों का मामला पेश किया जा रहा है, लेकिन शुरू में एक रुकू ऐसा है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की कायनात में फैली हुई ये निशानियां जो हैं उसका तज़किरा है। बहुत सॉफ्ट है, ऐसे लगता है कि बस सुनते ही जाएं और दिल में अल्लाह की मोहब्बत को पाते जाएं, तो ये हमारे लिए काफी होगा। आयत नंबर 54 से ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، یغشی اللیل النہار، جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر رات دن کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، کیا پتہ چلا کہ ستارے آتے ہیں نہیں لائے جاتے ہیں۔ کائنات کا یہ جتنا نظام ہے یہ آٹومیشن نہیں ہے، یہ آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کائنات خود سے خود نہیں چل رہی بلکہ اللہ لا رہا ہے، اور جو ستارے خود نہیں آتے لائے جاتے ہیں پھر وہ میری قسمت کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں کنٹرولر گاڈ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پہ کتنا کنٹرول ہے۔ جس نے سورج اور چاند اور ستارے سب پیدا کیے، سب اس کے تابع فرمان ہیں، خبردار رہو خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اس کا، بڑا مہربان ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار، اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد بھرپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اور اللہ ہی کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ۔ کیا پتا چلا، خوف بھی ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ اور طمع بھی۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے۔ یا رحمت سے کیا مراد ہے؟ بارش۔ جس طرح بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے نا، اسی طرح ایک مشاہدے کی بات ہے کہ قرآن جس کی زندگی میں آنا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی بھی کوئی نہ کوئی سمپٹمز ہوتی ہیں۔ اکثر ساتھی جو قرآن سے پھر شعوری طور پہ جڑتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خواب آتے تھے، کبھی کہتی ہے میں لاس تھی، کبھی زندگی میں کوئی اتنا بگ چینج آ جاتا ہے جس کو آپ برداشت نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے قدم اپنی کتاب کی طرف لاتے ہیں۔ تو کبھی آپ کی زندگی میں کوئی انیوژل واقعات ہونا تو سوچیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی رحمت دینی ہے، کوئی نعمت دینی ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں می برسا کر اس مری بھی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو ہم اس طرح مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ کیا سبق لینا ہے؟ کہ ہم اپنی فطرت کے اعتبار سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ سیبن نافعن، نفع والی بارش برسا۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں نفع مند بنا اور ہمیں ایک بارش کی طرح لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ پھر فرمایا، اب یہاں سے آپ دیکھیے، قومیں نبیوں کے سامنے جو آئیں ان میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک جو تھی جن کے دل بڑے ہرے تھے، فرٹائل لینڈ کی طرح، انہوں نے نبیوں کی زبان سے پیغام سنا اور مان گئے چاہے وہ تھوڑے ہی تھے۔ لیکن اس کے برعکس جو اکثریت تھی قوموں میں، وہ نافرمان تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال دے دیتے ہیں، اور وہ مثال کیا ہے؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، یعنی جس کا دل اچھا ہوتا ہے نا پھر اللہ اسے بہت نیکیاں لیتا ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے دو طرح کی نقیدہ کون ہے؟ وہ قوم کے لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلایا، اور جو بلد طیب تھے وہ کون سے؟ جنہوں نے مانا۔ ان کہانیوں کو پڑھنے کا انداز کیا ہوگا کہ ہم اس کے موسٹلی ترجمے کو پڑھیں گے، کیونکہ الحمدللہ یہ کئی دفعہ گیان ہے۔ ابھی تو آپ کے لیے ان کی سٹوری بھی ایک نئی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں انشاءاللہ ہم اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے تاکہ ہم اگلے ٹاپک جو بہت اہم آنے والے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو یہاں ہم صرف ریڈنگ کریں گے موسٹ آف دا سٹوریز کو۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کہ تمہارا خدا نہیں۔ نوٹ کیجئے، تبلیغ کرنے کا طریقہ انبیاء کرام سے سیکھیے، کیسے یا قومی میرے بھائی اللہ کی طرف بلا رہے، سائیڈ ایشوز میں، پیٹی ایشوز میں نہیں الجھاتے بلکہ अल्लाह की तरफ जोड़ते हैं और साथ ही अकीदे आखरत उनका दुरुस्त करते हैं कि मैं तुम्हारे हक में एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। उनकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नजर आता है कि तुम खुली गुमराही में मुबतला हो। देखिए इस तरह जुबान चलती है। बाज दफा दुनिया के माल असबाब रखने वालों की नबियों के मामले में कहा कि आप तो ऐसी अजीबो गरीब बातें करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। नूह ने कहा बरादरा ने कौम मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा। जवाब नहीं दिया कि तुम होगे गुमराह, बल्कि कहा नहीं नहीं मैं नहीं। इससे पता चलता है कि अपना दिफा करना चाहिए। बेवकूफ बन के घर ना आके बैठ जाए कि अच्छा लोगों ने हमें बातें सुना दी तो हम बोलेंगे तो फिर बुरे बनेंगे, चूंकि हम दीनदार हैं। अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को डिफेंड किया। नूह ने कहा बिरादरा ने कौम मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। ये है कॉन्फिडेंस, करेज। अपनी निस्बत हमेशा अल्लाह की तरफ जोड़े। तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचाता हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह। ये भी नोट कीजिएगा, सिंसियरिटी लोगों को लेकर आएगी। जब लोग ये फील करते हैं ना कि आप उनके लिए सिंसियर हैं तो वो खुशी से आएंगे। और अगर आप अपने कोई जाती फवायद उनके सामने रख दें कि आप आएंगे तो हमें ये फायदा होगा, तो बाद दफा लोग भी थ्रेट फील करते हैं। और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं, यानी अजाब के आने की खबरें। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि तुम्हें खबरदार करे और तुम गलत रवि से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए, मगर उन्होंने इसको झुटला दिया। आखिरकार हमने इसे और उसके साथियों को एक कश्ती में निजात दी और इन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था, यकीनन वो अंधे लोग थे। क्या मतलब हजरत नूह ब्लाइंड पीपल की तरफ आए? नहीं, ये दिल के अंधे थे। जिनके पास वक्त का रसूल मौजूद हो और 950 साल तबलीग करे और वो उसकी बात न माने, हकीकत में वंदे होंगे। सिर्फ 60-70 के करीब लोग बचाए गए। अब उन बचाए हुए लोगों में फिर खराबी आई तो उससे एक नई कौम पैदा की गई। वो कौन थी? वही लअदेनाखाहुम हूदन। और आज की तरफ हमने इनके भाई हूद अलैहि सलाम को भेजा। उन्होंने कहा बिरादराने कौम अल्लाह की बंदगी करो। नोट करें, हर नबी की दावत का नुक्ता आगाज क्या है? ओबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। आज भी लोगों को इसी नुक्ते से तबलीग करेंगे तो इंशाल्लाह दिल खुलेंगे। साथ ही कह दिए मअल्लकुम मिनिल्लाहि निर्गैरो, तुम्हारा इसके सिवा कोई खुदा नहीं, क्या तुम गलत रवि से नहीं बचना चाहोगे? इसकी कौम के सरदारों ने कहा, जो इसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब दिया हम तो तुम्हें बेअकली में मुबतला करते हैं। नोट करें, आज भी लोग कहते हैं दीनदार ये बेवकूफ, ये मुल्लाज और ये फला। तो दीन वाले को बेवकूफ समझना ये कोई नई बात नहीं है। इसका जिक्र तो दूसरे पारे के शुरू में ही आ गया था, सयकूल सुफहाओ। तो अगर कोई आपको बेअकल कहे तो जायजा ले लीजिए, क्या वाकई में बेअकल तो नहीं हूं? नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और हमें को मान है कि तुम झूठे हो। इसने कहा बिरादरा ने कौम मैं बेअकली में मुबतला नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुमको अपने रब के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि वो तुम्हें खबरदार करे? भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको इसका जानशीन बनाया और तुम्हें खूब तनोमन किया। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद करो। क्या पता चला कि दावत देते हुए लोगों को नेमतों का एहसास दिलाना चाहिए जो अल्लाह ने उनको दी। उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। उन्होंने जवाब दिया क्या तो हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और इन्हें छोड़ दे जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए? अच्छा तो ले आ वो अजाब जिसकी तुम्हें धमकी देता है अगर तू सच्चा है। इसने कहा तुम्हारे रब की फटकार तुम पर पड़ गई और इसका गजब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे इन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए? यानी उन्होंने अपने बुजुर्गों के कुछ नाम रखे हुए थे, किसी को दस्तगीर कहते, किसी को मुश्किल कुशा कहते। तो नबी कह रहे हैं कि दिखाओ नाम, अगर अल्लाह ने ये कहे हैं तो तुम रख लो, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की। अच्छा तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और उनके साथियों को बचा लिया और इन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयात को छुटलाया करते थे और ईमान लाने वाले ना थे। आप देख रहे हैं कि लोग जब ना मानना चाहे ना तो वक्त का नबी भी सामने आ जाए तो नहीं मानते। बड़ी जुरत के साथ एक बात कहने लगी हूँ, क्या आज हम उम्मत मुस्लिमा नबी सल्लम से कितनी शदीद मोहब्बत करते हैं ना? अगर आज अल्लाह का नबी दुनिया में भी आ जाए ना तो जो आज भी सुन्नतों को नहीं मान रहे वो कल भी नहीं मानेंगे, और जो आज भी अल्लाह की किताब की वैल्यू नहीं पहचानते ना वो तब भी नहीं पहचानेंगे। माजी के रसूल से मोहब्बत जतलाना और बात होती है, हाल के दाइये दीन की बात सुनकर वही बात सुनना और अपने आप को बदलना ये मुश्किल और बात होती है। तो दुआ कीजिए कि हम जैसे भी हैं अल्लाह के नबी के दौर में थे कि आज है, बस अल्लाह हमें इस दीन की कदर करने वाला बना दे। एक और नबी वाइला समूद अखाखुम सालेहा, और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालेह को भेजा, उन्होंने कहा बिरादराने कौम अल्लाह की बंदगी करो। इससे पता चलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कितना पुराना कलमा है। इसके साथ तुम्हारा कोई खुदा नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की खुली दलील आ गई, ये अल्लाह की उठनी तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर है, बस इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे, इसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना वरना एक दर्दनाक अजाब तुमको आलेगा। याद करो वो वक्त जब कि अल्लाह ने कौम आद के बाद तुम्हें इसका जानशीन बनाया और तुमको जमीन में ये मंजिलत बख्शी कि आज तुम इसके हमवार मैदानों में आलीशान महल बनाते हो और इसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। बस इसकी कुदरत के करिश्मों से गाफिल ना हो जाओ और जमीन में फसाद बर्पा ना करो। क्या पता चला कि जब अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके इंसान उसी से लोगों के लिए फसाद का काम करे तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आती। अब नबी की दावत कितनी सिंपल थी, आप देख रहे हैं कितना टू दी पॉइंट और प्यारे अंदाज से नबी बात करते हैं, लेकिन बड़े लोग जो खुद को बड़ा समझते हैं उनका जवाब सुन लीजिए। कालल मलजी नस्तकबरू मिन कौमिही, उनकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे कमजोर तबके के इन लोगों से जो ईमान ले आए थे, कहा क्या वाकई तुम जानते हो कि साले अपने रब का पैगंबर है। देखिए उनको बदगुमान कर रहे हैं लीडर से कि आर यू श्योर तुम सही बंदे के साथ लगे हुए हो, तुम सही समझते हो कि इसकी बातें ठीक है। उन्होंने जवाब दिया बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है इसे हम मानते हैं। इस बड़ाई के दावा करने वालों ने कहा जिस चीज को तुमने माना हम इनके मुनकर हैं। कितनी डिटाई है। फिर उन्होंने सूंटनी को मार डाला और फिर पूरे तमरुद के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे और साले से कह दिया कि ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो अगर तुम वाकई पैगम्बरों में से हो। देखिए कभी कोई ऐसा भी स्टबन हो सकता है कि अजाब मांगे और ऐसे खुल के मांगे जैसे ये मांग रहे हैं? वही मांगेगा जिसको यकीन होगा कि अजाब नहीं आना। इतना तो कोई बेवकूफ नहीं है कि वो कह अच्छा मुझे आग में डाल दो और उसको बताओ कि वो डाल देगा। यहां से देखिए कि कौम नबियों के बारे में कितनी बदगुमान थी, वो सोचती थी ये नबी नहीं है, ये झूठी नबूवत के दावे करते हैं। हुआ क्या फहाजत हम और रजफा, आखिरकार एक दिल दहला देने वाली आफत ने इनको आ लिया और वो अपने घरों में उंधे के उंधे पड़े रह के और साले ये कहते हुए इनकी बस्तियों से निकल गए कह मेरी कौम मैंने अपने रब के पैगाम आपको पहुंचा दिए और मैंने आपकी बहुत खैर ख्वाही की, मगर मैं क्या करूं कि आपको खैर ख्वाह लोग पसंद ही नहीं आते। इसको हाईलाइट कीजिएगा। व नसख्तु लकुम वला किल्ला तुहिब्बून नासिहीन, बाज दफा इंसान को अपने बच्चों को ये बात कहना पड़ता है कि बेटा मैं आपकी सिंसियर हूँ बट आपको सिंसियर लोग पसंद नहीं है, आई एम योर वेल विशर बट यू डोंट लाइक वेल विशर्स। और हकीकत है कि जितना आपको दीन समझ आता है उतना आप सिंसियर होते जाते हैं, आपको दूसरों की फिक्र लग जाती है। वलूतन इस काल अली कौम ही अतातून अल्फाखिशा, और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा कि फिर याद करो जब इसने अपनी कौम से कहा क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फुहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर उनकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने लूत और उनके घर वालों को सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचाकर निकाल दिया और इस कौम पर बरसाई एक बारिश, फिर देखो कि इन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। कौम लूत जिसका आज फिर दौर दौरा है होमोसेक्सुअल थे। अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती के साथ क्या किया, तीन अजाब इन पर आए थे, जलजला आया था, जिब्राइल ने अपना पर इनके बस्ती के नीचे डालकर इनको ऊपर जाके ऊपर से पलटा दिया था और इन पर पत्थरों की बारिश बरसी थी और वो पत्थर इनके सर के रास्ते से प्राइवेट पार्ट से नीचे चले जाते थे। इतना कभी फेल है ये, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के दौर में जो आने वाले फितने नजर आ रहे हैं जिस पे आज हमें काम करने की जरूरत होगी वो यही फितना है। इसके बारे में आप में से किसी ने एक शेयरिंग की थी, मैं चाहूंगी कि आप खुद कीजिए और मैं बात बताऊं तो गलत होगा, इस पे आगे और भी हम बातें बहुत सारी करते जाएंगे क्योंकि आज के दौर का ये बहुत बड़ा फितना है। जी शुरू कीजिए।
अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर पढ़ा, किसी ने इन्फॉर्मेशन भेजी थी तो मैंने उसके ऊपर उसका आर्टिकल पूरा पढ़ा, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि चंद कंट्रीज हैं दुनिया की, यूरोपियन कंट्रीज के नाम लिखे हुए थे पांच छह कंट्रीज के, उन्होंने बाकायदा बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी है کہ جب بچہ پیدا ہو تب سے اس کو سکھائیں کہ آپ نہ بوائے ہیں نہ گرل ہیں. باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر کھولا ہے اور ایک اسکول کھولا ہے, ایلیمنٹری اسکول, جن کا موٹو ٹیچنگ بچپن ہی سے یہی ہے کہ بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ وہ نہ بوائے ہیں نہ گرل ہیں. ان کو ماؤں کی تربیت دی جاتی ہے کہ بچوں کو بوائز کے کپڑے بھی پہنائیں, گرلس کے کپڑے بھی پہنائیں. انہوں نے ایسے پارٹس بنائے ہیں جس میں انہوں نے سارے اس ٹائپ کے جو پرائیویٹ پارٹس کی شیپ کی چیزیں ہیں وہ سب انہوں نے ایسے کھلونے کی طرح لیگوں کی شکل میں بنائی ہیں کہ بچوں کو سب کو فیملیائز کرو. دیر از نتھنگ ٹو ہائیڈ اباؤٹ, دیر از نتھنگ ٹو بی یو نو شرمناک اباؤٹ. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کرا ہے کہ پورے انہوں نے ایک کٹ سے بنائے ہیں جو بچوں کو ٹیک کیئر میں ان سے کھلاتے ہیں کہ دیکھو یہ پارٹس ہیں اور یہ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. اور بچوں کو یہ بھی سکھاؤ بچپن سے کہ اگر تم خالی لڑکی ہو اور تمہیں پنک کلر پسند ہے تو سم تھنگ رانگ ود یو, اگر تم خالی لڑکا ہو اور تمہیں بلو کلر پسند ہے یا بوائے میں یہ گاڑیاں اور ان سے کھیلنے کا شوق ہے کچھ چیز غلط ہے. تو ان کا بچوں کو ریز کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ تم بچپن سے ہوموسیکشل بن جاؤ. اور ابھی ریسنٹلی میرے بیٹے نے مجھے شیئر کرا کہ ایک وہ گیم کھیلتا ہے, کافی آسان اچھا گیم ہے, مجھے پتا ہے وہ کیا کھیلتا ہے, لیکن اس کے ایک لیول میں آ کے کہنے کا مما آئی کی ناٹ گو آفٹر دس لیول. میں نے پوچھا کیوں, کیونکہ وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد انہوں نے اس گیم میں انہوں نے سکھایا ہے کہ یو مسٹ ڈریس اپ لائک اے وومن اے گرل ان آرڈر ٹو ریچ دیٹ لیول. یہ گیم کے اس لیول کو کراس کرنے کے لیے تمہیں ڈریس اپ ہونا پڑے گا لڑکیوں کی طرح. تو پھر میرے فادر میرے ہسبینڈ نے اسے پوچھا تمہیں پتا انہوں نے ایسا کیوں کیا, کہتا ہے یا آئی نو بیکاز دے وانٹ می ٹو بیکم گے. تو دس از گوئنگ آن, ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو گیمس کی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے بچنے کی.
یعنی آپ یہاں سے فیل کر سکتے ہیں کہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور آج جیسے لگتا ہے پوری دنیا کو یہی کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لگتا ہے سب کچھ باقی جو پہلے دور میں تھا یا نیچرل تھا اور یہی نیچرل وے آف لیونگ ہے. آپ امیجن کریں جس گناہ پر ایک پوری قوم تباہ کر دی گئی, اگر آج سے, اور آج اثرات شروع ہیں, یہ جو آپ نے سنا ہے آپ کے لیے نیا ہوگا بھی, اس سے بھی بہت کچھ زیادہ ہے. لیکن یاد رکھیے آنے والی نسلوں کے لیے کیا ان کا دین ایمان بچے گا اگر ہم نے ان کے دل آج سے اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو عام کر دے اور ہم اس کو بہترین طریقے سے آگے پہنچا سکیں.